हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। तारा ये समझ चुकी थी कि धारा को उसकी बात समझ में नहीं आ रही है, और होता भी क्यों ना। धारा एक मामूली इंसान थी और तारा एक परी। उसकी बातें उसके सर से ऊपर से जाना तो लाजमी था। तब धारा ने ज्यादा न सोचते हुए तारा परी से कहा, आखिर आपको किस चीज़ की मदद चाहिए और आपको क्या जानना है? तारा परी ने धारा से कहा, सपोज करो तुम्हारी शादी शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन से हो जाती है और तुम उसी बिजनेसमैन के ऑफिस में एक एम्प्लॉय के तौर पर काम करती हो, लेकिन वो बिजनेसमैन तुम्हारी पहचान छुपाकर रखना चाहता है, अपने एम्प्लॉयज़ के सामने ये नहीं बताना चाहता कि तुम उसकी बीवी हो, क्योंकि उस बिजनेसमैन को, जो कि उसका बॉस भी था, ये मानना था कि अगर वो तुम्हारी पहचान पूरी दुनिया के सामने उजागर कर देगा तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। तो तुम्हारी जान बचाने के लिए उसने सबसे झूठ बोला था। और फिर उस बिजनेसमैन यानी उसके बॉस के एम्प्लॉयज उस लड़की और बॉस को लेकर बातें बनाने लगे थे और उस लड़की को उल्टा सीधा कहने लगे थे। और जब ये बात उसके बॉस को पता चली तो उसने सबके सामने ये एक्सेप्ट करने की जगह ये कहा कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी बीवी है और तुम्हें इससे कुछ भी कहने का कोई हक नहीं है। उसने उस लड़की को सारे ऑफिस वालों का हेड बना दिया था, जिससे वो लड़की जिसे चाहे ऑफिस से निकाल सकती थी, जिसे चाहे ऑफिस में रख सकती थी। अब तुम ही बताओ, इस सिचुएशन में अगर तुम होती तो क्या करती? तुम्हें क्या लगता है, उस लड़की के हस्बैंड ने, जो कि उसका बॉस भी था, ये सब कुछ सही किया और क्यों किया होगा? तारा परी ने अपनी दिल की उलझन धारा से कह दी थी। अब वो सिर्फ और सिर्फ धारा के जवाब के इंतज़ार में थी, क्योंकि तारा को रह रहकर ये बात बहुत ही ज़्यादा सता रही थी कि आखिर अमन में सबके सामने उसे अपनी बीवी एक्सेप्ट क्यों नहीं किया था और उल्टा उसे उन सब का हेड क्यों बना दिया था। धारा कुछ देर तक सोचने लगी और बोली, इन सब सिचुएशन में अगर मैं होती और मेरा पति एक बिजनेसमैन होता और सभी का बॉस होता और मैं उसकी एक मामूली एम्प्लॉय होती और फिर मुझे और बॉस को लेकर लोग इस तरह से मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें करते, तब मेरे पति ने इस बात को सुना और उसने सबके सामने मुझे हेड बना दिया लेकिन अपनी बीवी एक्सेप्ट नहीं किया, राइट? तो इसका मतलब साफ साफ है, मुझे मेरा पति मुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। अपने और मेरे रिश्ते की सच्चाई वो सबके सामने ना कहकर मुझे प्रोटेक्ट करना चाहता है और उसकी बीवी को कोई भी एम्प्लॉय वाला उंगली ना उठा सके, इसीलिए उसने उन सबका अपनी बीवी को हेड बना दिया है। तो इसका मतलब साफ है, इतना ज्यादा प्यार करने वाला पति किसी को भी जन्म में नहीं मिल सकता है। धारा ने जैसे ही अपनी थॉट तारा परी के साथ शेयर की, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और उसने खुशी के मारे धारा को गले से लगा लिया था, क्योंकि ये वही बात थी जो तारा समझ नहीं पा रही थी और उसके दिलो दिमाग में एक तूफान सा मचा हुआ था। अब धारा की बातें सुनकर उसका तूफान एकदम से शांत हो गया था, उसे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगने लगा था। तारा परी ने धारा को गले लगाने के बाद कहा, थैंक यू सो मच, तुम नहीं जानती तुमने मेरी कितनी बड़ी परेशानी दूर कर दी है, वाकई तुम काबिले तारीफ हो, तुम्हारी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। धारा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसने ऐसी कौन सी मदद कर दी है इस शक्तिशाली लड़की की, जबकि मदद तो इसने मेरी की है। तब तारा परी ने धारा से कहा, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे पिताजी के पास छोड़ देती हूँ, मैंने तुम्हारे पिताजी से वादा किया है कि बहुत जल्द मैं उनकी बेटी को उनके पास छोड़ दूंगी। अपने पिता के बारे में सुनकर धारा की आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि जिस तरह से सुधीर मिश्रा ने उसे उसके पिता के सामने अगवा किया था और उसके पिताजी को बुरी तरह से मारा था, तो धारा को तो लगने लगा था कि शायद उसके पिताजी जिंदा नहीं बचेंगे, लेकिन अपने पिताजी को जिंदा और सही सलामत सुनकर धारा को बहुत ही अच्छा लगा था और वो जल्दी से अपने पिता से मिलने के लिए बेचैन हो उठी थी। जल्दी ही तारा परी धारा को लेकर उसके पिताजी से मिलने के लिए चल पड़ी थी। जैसे ही धारा के पिताजी ने अपनी बेटी को देखा और सही सलामत देखा, वो रोने लगे थे। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी जिंदा बच गई है, वो भी सही सलामत। लेकिन धारा के पिताजी को एक कसक सी महसूस होने लगी थी, क्योंकि उनकी बेटी पहले जैसी नहीं थी। उनकी बेटी की इज्जत की अब धज्जियां उड़ चुकी थी और किसी भी शरीफ बाप के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। तारा परी धारा के पिताजी की बात समझ गई थी और उसने सोच लिया था कि वो धारा के पिता की सोच को बदल कर रहेगी। तारा परी ने धारा के पिताजी से कहा, मैं जानती हूँ काका आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन काका कोई भी इज्जत आपकी बेटी की जान से बढ़कर नहीं हो सकती है। आपकी बेटी राक्षस के चंगुल से बचकर आई है। अब आप अपनी बेटी के साथ रहिए और उसका साथ दीजिए। अगर आप अपनी बेटी के सामने इज्जत बेइज्जती की बात करेंगे तो शायद उसे बहुत ही बुरा लगेगा। उसे लगेगा कि वो जिंदा ही क्यों है, क्योंकि उसके खुद के पिता उसे अपना नहीं रहे तो ये समाज उसे क्या अपनाएगा। आपके बेटी के शरीर के जख्म तो मैंने भर दिए हैं, लेकिन उसकी आत्मा पर लगे जख्मों को सिर्फ और सिर्फ आपके प्यार और आपकी मोहब्बत भर सकती है। धारा के पिताजी बहुत ही ध्यान से तारा परी की एक एक बात सुन रहे थे और उन्होंने कहा, तुम सही कह रही हो बेटी, कुछ पल के लिए मैं इस इज्जत बेइज्जती को लेकर सोचने लगा था, लेकिन अब मुझे अच्छी तरह से समझ में आ गया है। मेरी बेटी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है और मैं अपनी बेटी को लेकर यहाँ से बहुत दूर चला जाऊँगा। जैसे ही उसके पिताजी ने ये बात कही, धारा ने अपने पिता की ये लास्ट वाली बात सुन ली थी। तब उसने अपने पिता से कहा, पिताजी मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। आप अच्छी तरह से जानते हैं इस आश्रम के अंदर हजारों बच्चे हैं और जब तक मैं इस आश्रम को सही सलामत सुरक्षित नहीं कर देती हूँ, मैं ये घर ये शहर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी और मैं उस सुधीर मिश्रा का मुकाबला करूंगी। धारा की हिम्मत वाली बात सुनकर तारा परी को अपने आप में एक हिम्मत सी महसूस होने लगी थी। उसने भी सोच लिया था, चाहे राक्षस का अंश या फिर राक्षस ही क्यों न आ जाए, वो भी धारा की तरह उसका मुकाबला करेगी। तब तारा परी ने धारा से कहा था, ये आश्रम की क्या कहानी है, मैं तुमसे जानना चाहती हूँ और मैं कोशिश करूँगी कि मैं तुम्हारी इसमें मदद कर पाऊँ। तारा परी की बात सुनकर धारा ने धारा को मनाते हुए कहा था, नहीं नहीं, आपने मेरी जान बचाई है, यही मेरे लिए बहुत है। और रही बातें आश्रम की, तो ये लड़ाई मेरी है और मैं इसे लड़ूंगी और अपने बलबूते पर जीतूंगी। धारा के आत्मविश्वास के सामने तारा को उसके सामने सर झुकाने का मन कर रहा था। उसने धारा से कहा, अगर तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो सिर्फ 3 बार दिल से, तारा मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, तारा मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, तारा मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, बस 3 बार दिल से ये कहकर पुकारना। मैं वादा करती हूँ मैं जहाँ भी होंगी मैं तुम्हारी मदद करने के लिए जरूर आऊंगी, ठीक है? और इस बार मैं कौन हूँ कौन नहीं, किसने तुम्हारी मदद की, तुम मेरे बारे में कभी भी किसी को नहीं बताओगी। वैसे भी धारा को खुद पूरी सच्चाई नहीं पता थी कि असल में तारा कौन थी, लेकिन वो इतना तो जान चुकी थी कि ये कोई आम लड़की तो बिल्कुल भी नहीं थी।
जल्दी ही तारा ने धारा से गले लगाकर विदा ली थी और जैसे ही वो धारा के घर से बाहर निकली, उसने बाहर देखा तो उसकी हालत खराब होने लगी थी, क्योंकि अब रात का दूसरा पहर चल रहा था। धारा की मदद करने के चक्कर में तारा परी को समय का एहसास ही नहीं हुआ था। इसका मतलब साफ था कि अमन कब का ऑफिस से आ चुका होगा और तारा को ना पाकर वो पूरे शहर में उसे ढूंढने भी लगा होगा, क्योंकि तारा को गायब हुए काफी देर हो चुकी थी। तारा परी जल्दी से अमन के घर की ओर निकल चुकी थी, लेकिन इतनी रात को उसे कोई भी ऑटो रिक्शा या कुछ भी नहीं मिल रहे थे। तारा परी कहने को तो एक परी थी, लेकिन उसे खुद के लिए अपनी शक्तियां यूज करने की परमिशन नहीं थी, तो इसीलिए वो जादू से भी अपनी शक्तियां यूज नहीं कर सकती थी। अगर उसे अपनी शक्तियां यूज करने की परमिशन होती तो वो पलक झपकते ही अमन के पास पहुंच जाती, लेकिन अब उसे रिक्शा का वेट करने के अलावा कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। और उसका जाना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि अगर वो टाइम से अमन के पास नहीं पहुंची तो अमन पूरे शहर को सर पर उठाने वाला था, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि अमन अब उससे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता है और वो किसी भी कीमत पर एक भी पल उससे दूर नहीं रह सकता है। फ्लैशबैक। वहीं अमन का ऑफिस में मन नहीं लग रहा था, इसीलिए वो जल्दी से अपने ऑफिस का काम खत्म करके अपने घर की ओर रवाना हो चुका था। लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचा, वो ये देखकर हैरान हो गया था कि घर पर तारा तो थी ही नहीं। और जब उसने अपनी मॉम करिश्मा जी से इस बारे में पूछा तो उसकी मॉम ने कहा, बेटा तारा अभी तक घर ही नहीं आई है, तुम हाफ छुट्टी की बात कर रहे हो, वो तो अभी तक घर नहीं पहुंची है। अपनी मॉम की बात सुनकर अमन का दिल तेजी से धड़कने लगा था। उसे किसी अनहोनी का डर सताने लगा था और उसकी नजरों में तो तारा एक मामूली इंसान थी और मामूली इंसान के साथ कुछ भी हो सकता था, उसकी जान को भी खतरा हो सकता था।